حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ عمل کے کیا اصول پتہ چلتے ہیں؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، تو اس میں ہمارے لیے کون سی آیا ہے، کون سی نشانی ہے؟ تو پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ لواطت جو ہے یہ بڑا قبیح جرم ہے، ہوموسیکچویلٹی جو ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا گھنونا جرم ہے، اور یہ وہ قوم تھی جو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، یہ وہ قوم تھی جس نے جو ہے وہ اس فعل بد، جس کو جو ہے وہ لواطت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا کی تھی، اور اب یہ بدفعلی جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ عام ہے. تو بعض ممالک ایسے ہیں جو قانوناً اس کو جائز سمجھتے ہیں، انہوں نے جائز اس کو تسلیم کر لیا ہے، سرے سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عملے قوم لوط یا ویسے مرد اور عورت کا ناجائز جو جنسی ملاپ ہے، اگر آپس میں اجازت سے ہو، آپس کی رضامندی سے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جرم نہیں ہے، ہے نا؟ اور جو ہے پھر جب مرد اور عورت کا تعلق ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپس کی رضامندی سے ہو تو یہ جرم نہیں ہے، تو پھر دو مردوں کا آپس میں بدفعلی کرنا ان کے نزدیک کیسے گناہ یا ناجائز جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ ہوموسیکچویلٹی جو ہے یہ حرام ہے، یہ ہم جنس پرستی، خواہ مردوں کی مردوں کے ساتھ ہو، عورتوں کی عورتوں کے ساتھ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ غیر فطری غیر طبعی عمل ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ یہ کام جو تھے وہ سرعام کرتے تھے، محفلوں میں کرتے تھے، راستوں میں کرتے تھے، زبردستی کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اگر مسافر بھی ان کے پاس آ جاتا تھا تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، جیسے کہ فرشتے ان کے پاس آئے نا، تو کیسے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر. تو پہلی بات کیا ہے کہ لواطت جو ہے نا یہ حرام ہے، اور ہمیں بھی اس بات پر دیکھنا چاہیے کہ کہیں جو ہے وہ یہ جو مغرب ہے اس کے اثرات مسلمانوں پر تو نہیں آ رہے، ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان، یہ ہاسٹلز اور یہ عام جو جگہ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ بعض ہاسٹلز میں بھی اور جہاں پہ جیسے بچے اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں پہ اس بات کا جو ہے وہ پتہ چلا ہے، اخبارات میں بھی ریسرچ جو ہے وہ آئی ہے. دوسری بات کہ یہ جو لواطت ہے نا، یہ چونکہ فطرت کے خلاف جنگ ہے، اور جب کوئی قوم یا کوئی فرد جو ہے وہ غیر فطری عمل کرتا ہے، غیر طبعی عمل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی عمل جو ہے وہ جائز اور حلال رکھے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، نفع بخش ہیں، اور ہر اس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے جو ہماری دنیا میں جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں یا آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں. تو انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا، اور انسانی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح جو ہے اس کا مقدس نظام انسانوں میں جو ہے وہ رائج کیا، اور اسی لیے نکاح جو ہے نا اس کو آسان رکھا گیا ہے، اس کو رسموں میں جو ہے اور مختلف بندھنوں میں اس کو جکڑ نہیں دیا گیا، تاکہ انسانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مناسب راہ مل سکے، نسل انسانی کا جو ہے وہ بقا کا سامان مہیا ہو، اور معاشرے میں جو ہے وہ امن و سلامتی جو ہے لوگ اس کی زندگی بسر کر سکیں. آپ سورت نور میں بھی تفصیل سے پڑھ چکی کہ جب جوان ہو جائیں اور تو اس وقت جو ہے وہ جائز طور پر ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نکاح کی سہولت جو ہے بچوں کو فراہم کر دینی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ ایک سے زیادہ شادیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے، کتنی کر سکتا ہے؟ چار. تو یہ اہم بات ہے. پھر آپ دیکھیے اگر آپ غور کریں تو کیا ہے کہ خاندانی نظام حیات ختم ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ مرد مردوں سے، عورتوں عورتوں سے، عورتیں عورتوں سے لذت لے رہی ہیں نا، نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، اور शहवत परस्त कौमें जो हैं उसमें औरतों का क्या हाल है, वो बच्चे जनने को तैयार नहीं है, उनकी परवरिश उनकी तरबियत पर भी वो औरतें जो हैं वो राजी नहीं हैं। और अब सालाना अरबों डॉलर जो है हुकूमत बच्चे जनने वाली माओं को इनामात की शक्ल में देती है, और नतीजा क्या है कि हुकूमत प्रमोट कर रही है कि बच्चे जो है वो होने चाहिए। इसी तरह जो है ये मोहलिक अमराज जिसमें एड्स है और खारिश है, सिलान है, सुजाक है, आतिश है, तो आला तनासुल वो जो खास प्राइवेट पार्ट है उसकी भी मुख्तलिफ बीमारियां, खतरनाक फोड़े, फिंसियां, वो गैर फितरी तौर पर जो है वो जब बहुत से लोगों से ये ताल्लुक कायम किया जाता है तो क्या है कि ये बीमारियां आम हो रही हैं, और हुकूमत जो है वो इस पर भी अरबों डॉलर खर्च कर रही है। एहतियाती तदाबीर हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जो अमराज हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे और अब वो मर्ज जो है वो बहुत तेजी से आम होते जा रहे हैं। तो ये तो है दुनिया में बीमारियां, लेकिन आप सोच लें कि आखरत में जो है आखरत का अजाब तो और शदीद है, क्योंकि अल्लाह के कानून को जब तोड़ा जाता है तो अल्लाह का अजाब तो बड़ा ही सख्त है ना। और इस कौम पर जैसे अजाब आया है, बड़ा सख्त अजाब है कि नीचे की चीज ऊपर, नीचे के लोग ऊपर, ऊपर के नीचे बिल्कुल उनको उलट दिया गया, उनको पटख दिया गया, उनको जो है वो बुरे तरीके से जो है वो खत्म कर दिया गया। तो ऐसा क्यों था? इसलिए कि यही वो लोग थे जो कि आदून थे, हद से गुजरने वाले थे। अच्छा, और हमारे लिए इसमें अमल के लिए फिर क्या उसूल जो है वो मिलता है कि हम इस बात को मत भूलें कि इस्लाम जो है ना हमें, हमारे अंदर हया देखना चाहता है, इफ्फत असमत की हिफाजत देखने चाहता है। हर बेहयाई, हर गैर फितरी अमल को इस्लाम जो है वो नापसंद करता है, और उसके लिए इस्लाम ने शदीद जो है ना वो सजा मुकर्रर की है। हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये अमले कौमे लूत, लूत अलैहि सलाम की कौम का जो अमल था लवातत, इसकी सजा क्या बताई कि तुम जिस शख्स को कौमे लूत वाला अमल करते देखो तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। ये सुनने अबी दाऊद की रवायत है। और इसी तरह इस फेल के मुर्तकिब शख्स को अगर कोई ऐसा फेल करता है तो इसके मुर्तकिब को, करने वाले को पत्थरों से रजम कर दिया जाए, खा वो कमवारा हो या शादीशुदा। और ये राय जो है इमाम अहमद, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आइमाए कराम की है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसे शख्स को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया जाए, फिर इस पर पत्थरों की बारिश भी कर दी जाए, जैसा कि लूत अलैह सलाम की कौम के साथ किया गया था। और लूत अलैह सलाम की कौम के साथ जो है वो क्या किया गया था कि जिब्राइल अलैह सलाम ने इनको बस्तियों समेत पहले आसमान तक उठाया, यानी बुलंदी पर उनको लेकर गए, फिर नीचे फेंक दिया, जिससे इनका नामो निशान जो है वो मिट गया। जालना आलिया साफिलाहा वामतरना अलिया हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद मुसव्वमतम मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीना बिबईद। सूरत हूद से ये बात पता चलेगी कि कितना दर्दनाक इसका जो था वो अंजाम हुआ था। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वाक्य से क्या बात पता चलती है कि जो है वो अमले कौमे लूत जो है ना ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, ये हराम है अल्लाह के नजदीक, फितरत से जंग है, अल्लाह के कानून से जंग है और इसके मुजर असरात। और अब अगर आप जाए ना इसके ऊपर इंटरनेट पे, आप जाए गूगल में आप डालें कि जो है वो इसके होमोसेक्सुअलिटी के क्या जो है वो इफेक्ट्स हो रहे हैं, आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स हैं और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो इस पर रिसर्च करके, और आपको बेशुमार जो है वो मिल सकते हैं। तो आप में से कौन है जो इंटरनेट पे जाकर इसकी रिसर्च करेगा ताकि आपकी क्लास में उसको पेश कर सकें? क्योंकि वैसे तो कुरान और इस्लाम इस बात का मोहताज नहीं है कि साइंस उसको प्रूफ करे या रिसर्च उसको प्रूफ करे, लेकिन क्या है कि और ज्यादा इंसान के अंदर ऐनुल यकीन की कैफियत जो है वो पैदा होती है, और अब ऐसी बातें हमारे सामने रिसर्च के तौर पर आ भी रही है ना। इंशाल्लाह फिर इसको आपके सामने रखा जाएगा। दूसरी बात ये कि मेहमानों की इज्जत और दिफा करना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आते हैं तो आप बहुत परेशान हैं, आपकी कौम बद किरदार है, और खूबसूरत फरिश्ते आए हैं खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, तो अब आपको ये डर पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि मेहमानों की इज्जत और आबरू की आप हिफाजत ना कर सकें, है ना? तो इसलिए आप बहुत ही ज्यादा परेशान थे और कहते हैं काश कि मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी जबरदस्त का आसरा पकड़ लेता। तो हम क्या जिम्मेदारी बनती है कि मेहमान अगर हमारे घर आए तो हम उनकी इज्जत असमत उनकी चीजों की सब हिफाजत करें। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर या हमारे घर जो मेहमान आया हुआ है कोई और दूसरा शख्स आके वहां पे उससे लड़ाई करे या बेइज्जती करे या उसको कुछ कहे। बाज़ औक़ात होता है ना कि दो लोगों की आपस में कोई बात होती है तो ठीक है बाहर जाकर अपने घर के अंदर आगे पीछे बहुत सी जगह होती है, लेकिन आपके घर या मेरे घर जो मेहमान है वो जो भी है जो मेहमान है वो मेहमान है, तो उसकी इज्जत जो है वो मेजबान पर जो है वो फर्ज है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह और कयामत पर यकीन और ईमान रखता है उसे मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। तो ये है असल बात कि इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। फिर इसके बाद वाकया है कौमे शुएब का और यहाँ पे जिक्र हो रहा है असाबुल ऐका का। तो असाबुल ऐका जो थे ये कौन थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कज़्ज़ब असहाबुल ऐकतिल मुरसलीन। असाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया। इज़ क़ाल लहुम शुएबुन अला तत्तकून। याद करो जबकि शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था क्या तुम डरते नहीं क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते? तो असहाबुल ऐका ऐका के रहने वाले ऐका की सोहबत इख्तियार करने वाले उन्होंने रसूलों को झुटलाया। तो ये असहाबुल ऐका थे कौन? इस सिलसिले में जो हमें पता चलता है अब आप देखें कि ये आयत जो है इससे भी ये बात पता चलती है कि असाबे मदियन और असाबुल ऐका दो अलग अलग कौमें थी, है ना? क्योंकि आपने शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी पढ़ा कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को जो है वो किस कौम की तरफ भेजा गया? मदियन वालों की तरफ भेजा गया जो कि तिजारत में नाप तोल में जो थे वो कमी करते थे। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि असहाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था। ये शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाँ उनकी बीवी के वालिद थे। हाँ तो क्या हुए फिर उनके हाँ उनके सुसर हुए या खुसर या सुसर जो भी कहते हैं। तो अब इससे हमें क्या बात पता चलती है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने असाबुल एका की तरफ भी भेजा। क्योंकि असाबुल एका का मुख्तसिर सा जिक्र सूरत हिजर में भी आता है, सूरत हिजर 78 से लेकर 84 तक, और यहां इसकी तफसील बयान की जा रही है। तो मुफस्सरीन की एक राय तो ये है कि ये एक ही कौम के दो नाम है ना? एक ग्रोह का क्या ख्याल है? ये दो अलग अलग कौमें हैं और एक ग्रोह जो है वो ये कहता है कि ये जो है मदियन और असाबुल ऐका अलग अलग दो कौमें थी। अब आप देख लें सूरत आराफ में आप पढ़ चुकी कि अल्लाह ताला ने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अहले मदियन का भाई कहा, वइला मदियना अखाहु शोएबा। गोया के अहले मदियन में से थे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मदियन की तरफ उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अब यहां पे जब असाबुल ऐका का जिक्र हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है? इज काला लहुम शोएबुन। जब उनसे उनके जब उनको कहा, किसने कहा? शोएब अलैहिस्सलाम ने। अब यहां पे अखूहुम का जिक्र नहीं आया, तो फिर वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे ये बात पता चलती है कि असाबुल ऐका और मदियन वाले जो हैं ये या तो एक ही कौम के लोग थे, या ये जो है उनका ये ख्याल है कि ये दो कबीले थे जो पास पास रहते थे, यानी एक ही नस्ल की दो शाखें, एक थी असाबे मदियन और दूसरी है असाबुल ऐका। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो हैं वो हजरत असाबे मदियन में से थे क्योंकि अखूहुम अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा, लेकिन यहां पे सीधा ही कह दिया कि असाबुल ऐका ने जब रसूलों को झुठलाया तो याद करो जबकि शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि क्या तुम डरते नहीं हो। तो बहरहाल हमारे सामने इससे फिर क्या बात आती है कि जो असाबुल ऐका और असाबुल मदियन हैं, यानी एक कौल है कि दोनों एक ही कौम के नाम है, दूसरा कौल है ऐका एक दरख्त का नाम था जिसकी ये लोग पूजा करते थे, इसी निस्बत से उन्हें असाबे ऐका कहा जाता है, तीसरा कौल है कि इन लोगों की बस्ती और ये इलाका जो असाबे मदियन का था इनका आपस में ये अलग अलग था, और असाबुल ऐका का मानी होता है बन माले, यानी बस्ती एक लंबी सी बुलंद जगह पर थी जहां बागात के झुंड बकसरत थे, और शुएब अलैहिस्सलाम जो थे असाबे मदियन और असाबुल ऐका दोनों की तरफ भेजे गए। और ऐका जो है कहते हैं झाड़ी को भी, बन को भी, जंगल को भी, और कहते हैं कि एक गहरे साए वाले ऐसे दरख्त को कहते हैं जो दोहरा हो गया हो, और मदियन के गांव को शायद ऐसे बड़े बड़े दरख्तों ने घेरा हुआ था। तो बहरहाल असल बात जो हमारे सामने आती है, या तो ये दोनों जो थे वो करीब करीब रहते थे, या ये दोनों जो थे वो यानी दो कबीले थे जो कि एक ही नस्ल से थे और अलग अलग रहते थे, और शुएब अलैहिस्सलाम थे तो अहले मदियन में से, और फिर साथ ही उनको जो है वो शुएब अलैहिस्सलाम को जो है वो एका वालों की तरफ भी भेजा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं असाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया, तो ये वही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर भी थे, जिनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो 8-10 साल तक तरबियत हासिल की थी, शहरी जिंदगी को छोड़कर, मिस्र की जिंदगी को छोड़कर आप गांव में गए थे तरबियत के लिए। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो नसब है ना, ये भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर जो है वो मिलता है, पांचवी जो है वो पुश्त में ना। तो अब आप देख लें कि पहले जैसे पैगंबरों का जिक्र है और कौमों का जिक्र है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असहाबुल ऐका ने रसूलों को जो है वो झुटलाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि रसूलों को झुटलाया, तो आपको पता चलता है ना कि एक रसूल को झुटलाना तमाम रसूलों को झुटलाना है, क्योंकि तमाम रसूलों की दावत जो थी वो एक ही थी। तो जैसे पिछले पैगंबरों ने कहा है, बिल्कुल उसी तरह से शुएब अलैहिस्सलाम भी कहते हैं अला तत्तकून, कि तुम जो है वो रसूलों को क्यों झुटलाते हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए हूं, बेशक मैं तुम्हारे लिए हूं रसूलुन, रसूल रसूल का क्या मतलब है, पैगाम लाने वाला, सफीर, कासिद, और कासिद भी किसका, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। और दूसरी बात क्या है, अमीनुन, ईमानदार, कि अल्लाह ताला ने जो भी पैगाम मुझे दिया है मैं उसमें बगैर किसी कमी बेशी के तुम्हारे पास पहुंचाने वाला हूं। और दूसरे इसके मानी ये हैं कि आप जो थे, आप भी सोसाइटी के अंदर आपका किरदार जो था वो अमीन था, सच्चा था, जैसे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफिर जो थे वो अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे। फिर क्या कहा, फत्तकुल्लाह वातीउन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात इख्तियार करो। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा जो है वो क्या है, ये सिर्फ जो है वो जाहिरी अपनी शेप को बदल लेने का नाम नहीं है, बल्कि जाहिरी शेप के साथ साथ अंदरूनी जो कैफियत है वो भी ठीक होनी चाहिए, कि ना दिल के अंदर कुफर हो, ना शिर्क हो, ना किब्र हो, ना निफाक हो, ना फिस्क हो, और दिल जो है वो ईमान से भरा हुआ हो, ईमान से माला माल हो, और अल्लाह का डर इतना शदीद हो और इतना ज्यादा हो कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, बस अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकामात को पूरा करो। क्यों रसूलों को झुटलाते हो, क्यों अल्लाह की बात नहीं मानते? वाती ऊनी और मेरी अतात करो, मेरी अतात तुम क्यों ना करो? इसलिए कि मैं रसूलुन अमीन हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तुम मुझे मानते हो कि मैं जो हूं एक अच्छा इंसान हूं। तो ये बात है जो उन्हें कहते हैं कि फत्तकुल्लाह वाती ऊन وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تم سے اس کام پر، یہ جو دعویٰ کا کام ہے جو تمہیں میں سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، میں تم سے کچھ بھی تو مطالبہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بے لوس ہوں، میں مخلص ہوں، اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، مجھے اللہ سے اجر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اب پھر اس قوم کی جو خاص بیماری تھی، اس قوم کے اندر جو مذہبی اور اخلاقی طور پر بگاڑ پایا جاتا تھا، اب اس پر جو ہے ان کو توجہ دلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ اوفو، وفا کرو، پورا پورا جو ہے وہ بھرو، الکیلا پیمانے کو۔ کہتے ہیں کہ جب تم ماپا کرو، ناپا کرو، تو پورا پورا دیا کرو۔ ولا تکونو، اور تم نہ ہو جاؤ، من المخسرین، گھاٹا دینے والوں میں سے، اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ تو کیا بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ گویا کہ یہ قوم جو تھی تجارت پیشہ تھی، اور یہ قوم کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم لین دین میں ہیرا پھیری کی مرتکب تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ قوم جو تھی یہ دو تجارتی شاہراہوں کے چوک پر آباد تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ دو شاہراہ ہوں، دو ہائی وے ان کو لگتے ہوں، اور اس کے چوک پر یہ آباد ہو، تو گویا کہ ان کا پورا علاقہ جو تھا وہ بہت بڑا بھاری تجارتی مرکز تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب دبئی جو ہے وہاں پہ بڑی زبردست تجارت ہے، عالمی منڈی بن گیا ہے، حرم کی وجہ سے سعودیہ عالمی منڈی ہے۔ کبھی جیسے پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو کراچی بہت بڑی عالمی منڈی تھا، ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ امریکہ میں نیو یارک ہے۔ تو مختلف علاقے، مختلف جگہیں، مختلف اسباب اور سہولتوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تجارتی منڈی بن جاتی ہیں۔ تو یہ جو قوم تھی نا، یہ تجارتی منڈی کے، تجارتی مرکز کے پاس جو تھی وہ آباد تھی۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس آباد ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ فائدہ بھی بہت اس سے اٹھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہوں۔ تو اس قوم کی ایک بیماری تو تھی شرک، ہے نا، دوسری ان کی بیماری کیا تھی، جو سب سے بڑا ان کا جو تھا وہ مرض تھا، وہ تھا تجارتی ہیرا پھیری اور ناپ تول میں۔ جیسے ماپنا، جو لیکوڈ چیز ہوتی ہے اس کی آپ میئرمنٹ کرتے ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، یا اور ایسی بہت سی جو لیکوڈ چیزیں ہیں اس کو ماپ کر دیا جاتا ہے نا، جیسے جوسز ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ناپ میں کمی کرتے تھے۔ تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا، اوفو الکیلا، کہ جب جو ہے تم ماپا کرو، ناپ کرو، تو پیمانے ٹھیک بھرا کرو۔ اوفو الکیلا، کیل جو ہے وہ ماپنے کے لیے جو پیمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے، کہ ناپ پورا دیا کرو۔ دوسری بات کیا تھی، ولا تکونوا من المخسرین، مخسر، مخسر کہتے ہیں کمی کرنے والے کو، تو مخسر کی جمع ہے مخسرین۔ تو تم جو ہے جو اور کمی کرتے ہیں، تم ان میں شامل نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ جب ماپتے تھے تو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے تھے، ہے نا۔ यहाँ पे उनको मना किया जा रहा है। दूसरा क्या है, वजनू बिल किस्तासिल मुस्तकीम, वजनू और वजन करो, जिनू यहाँ पे ऑर्डर का सीगा है, जिन तू वजन कर और जिनू तुम सब जो है वो वजन करो, तुम सब जो है वो जब तोलो बिल किस्तासी, तो बिल किस्तास के मानी क्या है कि सही तरह इंसाफ किस्त से है, काफ सीन तोए भी इसका रूट है और काफ सीन तोए सीन ये असल में इस्म आला है मिफाल के वजन पर, कि तुम जो है वो तुम्हारा तराजू जो है ना वो इंसाफ वाला होना चाहिए, मुस्तकीम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो आप लिक्विड चीजों को माप रहे हैं उसमें भी कमी बेशी नहीं करें, अब आप कुछ चीजों को तोल रहे हैं तो तोल के वक्त भी क्या करें कि किसी का हक जो है मत मारें। और आप देख लें कि इस तरह तोलते थे कि गाहक जो है वो 100 दफा तराजू देखता रहे मगर उसके देखते देखते तीसरा चौथा हिस्सा इसका हक मार जाते थे, और हाथ की सफाई दिखाते थे कि दूसरों को पता भी नहीं चलता था, है ना। तीसरी बात क्या कही कि वला तबखसु नासा अशियाअहुम, और लोगों को उनकी चीजें जो है वो कम करके ना दो, तब खसू बाखासीन कमी करना, किसी को घटिया चीज दे देना, रद्दी चीज दे देना, नक्स वाली चीज दे देना, है ना। तो ये क्या करते थे, तिजारती बददियानती के जितने भी राज है ना, जो फ्रेब हैं, फ्रेबकारियां, उनसे खूब वाकिफ थे, तो जो ऐबदार माल होता था ना उसको छुपा कर फरोख करते थे, झूठ बोल देते थे, झूठी कसमें खाते थे, ऐसा माहौल पैदा किया हुआ था कि चीज का मालिक जो है कम से कम कीमत पर अपनी चीज फरोख्त करने पर मजबूर हो जाए, और जब वो चीज खरीदना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कीमत देने पर वो मजबूर हो जाए। तो दूसरा के वो क्या करते थे, दूसरों के हकूक जो थे वो गसब करते थे, छीनते थे, ये था इनका गुनाह के इस तरह वो जमीन में जो थे वो फसाद पैदा करते थे। तो आजकल भी जो तिजारत पेशा लोग हैं उनको जरूर गौर करना चाहिए, तिजारत बिजनेस जो करते हैं वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे, तो अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या बात याद रखना चाहिए कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, कि इसमें जो है वो गबन ना करें, इसमें जो है वो चीजों को जो है वो ऐसे ना हो कि नक्स वाली चीजों को सोसाइटी में और बाजार में ले आएं और फिर उनको बेचना शुरू कर दें। जैसे एक थान है कपड़ों का, और कपड़े का थान है, कोई कपड़े का कारोबार करता है, तो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि नक्स वाला कपड़ा अंदर रहने देते हैं और पता नहीं चलने देते, रंग में फर्क है, वैसे कपड़े में कोई सुराख हो गए हैं, तो बताना चाहिए ग्राहक को और कहना चाहिए कि इसलिए मैं इसकी कीमत जो है वो कम लगा रहा हूं क्योंकि ये जो है इसके अंदर नक्श है। या फिर ये होता है कि कपड़े को मापते वक्त भी क्या करते हैं कि उसमें डंडी मार लेते हैं, कि हाथ से ऐसे कुछ करते हैं करतब के वो कम हो जाता है, जब घर आके आप देखते हैं तो आपका कपड़ा जो है वो कम होता है। तो ये क्या है, ये है चीज कि लोगों को चीजें जो है वो कम ना दो। तो तीन बातें रखी कि बात मेजरमेंट की हो, मापने की हो, बात तोलने की हो, और बात गिन कर चीज देने की हो, या कपड़ा माप कर देने की हो, या वैसे जैसे होता है कि पड़ा पड़ा पूरा जो है वो जहाज ही बेच दिया, शिपमेंट आई है पूरा जहाज ही आप बेच रहे हैं, तो आप सही बात बताएं, ये ना हो कि जब वो जाए तो अंदर चीजें जो है उसमें कम निकले, गलत निकले, है ना। तो ये है असल बात। अच्छा, जब ऐसा किया जाता है तो होता क्या है, जमीन में फसाद पैदा होता है, लोगों के जब हकूक मारे जाते हैं तो क्या होता है, जमीन में फसाद पैदा होता है। तो कहा वला तासो फिल अर्द मुफसदीन, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। तो अब यहां पर जो है क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम जो है दूध में पानी मिलाकर फरोख्त करोगे, अगर चीनी जो है उसमें रेत डाल दी जाएगी, अगर घी में चर्बी को मिक्स कर दिया जाएगा, अगर कोई शख्स गंदम लेने आया है तो उसकी जगह उसमें जौ मिक्स कर दिया जाए, है ना, या मसाले खरीद रहा है तो उसमें लकड़ी का बुरादा पीस कर मिक्स कर दिया है ना, गोश्त खरीदने आया है छिछड़े डाल दिए हैं, चर्बी को अच्छी तरह साफ ही नहीं किया, लेने वाला तो गोश्त लेने आया है लेकिन जो है अब वहां पे तो घर आ रहा है, आप आके छिछड़े चर्बी जब उतारते हैं तो गोश्त बड़ा थोड़ा सा रह जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये वजन पैमाना जो है ये इस तारीफ में आती हैं कि तराजू ठीक नहीं है और जो है वो कमी करके दी गई है मुखसेरीन, कमी करने वालों में है, या फिर ये कि बख्स पाया जाता है कि रद्दी घटिया खराब चीजें जो है वो दी जा रही हैं। तो इससे क्या होता है कि आदमी जो है उसका दिल जो है वो मुतासिर होता है, उसकी सेहत मुतासिर होती है, उसका दिल जो है वो खराब होता है कि मैंने पैसे दे के मैं चीज लाया हूं और देखे कितनी खराब। इसी तरह ये बाज रेस्टोरेंट है, बाज होटल है, कहते कुछ हैं, आप ऑर्डर दे देते हैं, जब चीज सामने आती है तो आप निवाला मुंह में नहीं डाल सकते, पिछला खाना मिला दिया उसके अंदर। तो ये सारी बातें क्या है, ये फसाद की तारीफ में आती हैं, क्योंकि मिजाने हक है ना, जो मिजाने अदल है उसको जो है वो धर्म भरम कर दिया गया है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि ये चीज जो है ना ये हराम है, ये चीज हराम है। वला तासौ फिल अर्दी मुफ्सिदीन, तो जमीन में फसाद फैलाने वाले मत बनो, लोगों के साथ ज्यादती करने वाले मत बनो। तो अब आप देख लीजिए कि वक्त का पैगंबर है और जो लोगों के मामलात में वो डंडी मार रहे थे ना उसे मना कर रहा है ना। ये बात इससे क्या बात पता चलती है, दीन सिर्फ नमाज रोजा हज और जकात का नाम नहीं है। ये बड़े बड़े ताजिर हैं, अलहाज हैं, नमाजी हैं, माथे पर जो है वो नमाज पढ़ने से गट्टे पड़े हुए हैं, पैंचे जो है वो टखनों से ऊपर हैं, और इसके साथ जो है वो क्या करते हैं, धोखा देते हैं, ज्यादती करते हैं। तो जैसे पीछे आपने पढ़ा कि सियासत में तब्दीली भी पैगंबर ने चाहा, तो यहां पे मामलात को ठीक करना भी जो है वो पैगंबर की जिम्मेदारी थी, है ना। तो यहां पे मतवजो किया जा रहा है कि तुम ये काम जो है वो ना करो। दूसरी हमें क्या बात पता चलती है कि ये जो कौम थी जब दो बड़ी शाहराओं पर आबाद थी तो इसके साथ क्या करती थी कि तिजारती काफले जब इनके पास से गुजरते थे तो तिजारती काफलों को ये गुजरने नहीं देती थी जब तक कि उनसे कुछ पैसे वसूल ना कर ले। जैसे होता है ना कि आप मशहूर है कि जगह टैक्स है ना भरता, तो हाँ जगह टैक्स भी आप इसे कह सकती हैं। जैसे जो है क्या पता चलता है, इमाम सुदई रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाए कराम से मस्कूरा आयत का ये मफहूम बताया कि वो लोग गुजरने वालों वाले लोगों के मालों में से दसवां हिस्सा वसूल किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने भी यही तशरीह करते हुए फरमाया, सबसे पहले इन लोगों ने ये जालिमाना तरीका इजाद किया। ये जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो इजाद की, तो इन्होंने जो है वो क्या इजाद किया, ये टैक्स लेना बगैर किसी मेहनत के जो है वो रुकावट खड़े कर देते थे कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तुम अपना कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं, तो वो लोग बताते हैं कि मुकर्रर है वीकली या फिर सुबह सुबह हर रोज या फिर मंथली। बाज जगहों पे तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे आते हैं, कोई लोग होते हैं और जिनके पूरे जरगे हैं और पूरा एक उनका जो है वो एक जत्था बना हुआ है कि वो आके वसूल करते हैं। वो कहते हैं कि वरना तुम्हारी शिपमेंट उठने नहीं देंगे, तुम्हारी दुकान खुलने नहीं देंगे, किसी की दुकान को आग लगवा दी, किसी का सामान जलवा दिया, किसी का सामान उठवा दिया। तो जो ग्राहक हैं, जो दुकानदार हैं, जो ताजिर है, वो मजबूर हो जाते हैं कि इनको जो है वो कुछ पैसे जो है वो दे। तो ये सारी चीजें जो है ये हराम है। तो ये लोग क्या करते थे कि ये भी जो थे वो वसूल करते थे। और जैसे सूरत आराफ में आता है, वलतक़ुदू बिकुल्ली सिरातिन तूअदून, और हर रास्ते पर लोगों को डराने वाले ना बैठो। तो ये क्या करते थे, लोगों को डराते थे और उनसे पैसे जो थे वो वसूल करते थे। फिर आप देख लीजिए कि फिर करना क्या चाहिए कि अब जो है इंसान ये चीजों में मिलावट क्यों करता है, और जो है वो नाप तोल में कमी क्यों करता है, वो चाहता है कि उसको कुछ नफा मिले, उसको कुछ फायदा हो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बकीयतुल्लाह खैरुल्लकुम, कि अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सूरत हूद में जो है, अगर आयतें 85 से 86 तक आप पढ़ें तो वहां पे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला कहते हैं बकीयतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, कि अल्लाह का दिया हुआ नफा ज्यादा बेहतर है जो हलाल तरीके से आप जो है वो हासिल करेंगे। हजरत इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लोगों को पूरी चीज नाप तोल कर देने के बाद तुम्हारे पास जो नफा बचता है वो इससे बेहतर है जो तुम नाप तोल में कमी करके लोगों के हक में से रख लेते हो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेचने वाला और खरीदने वाला इख्तियार रखते हैं जब तक एक दूसरे से अलग ना हो, अगर वो सच बोले और सौदे की हकीकत को वाजे करें तो दोनों को इनके सौदे में बरकत दी जाती है, और अगर वो छुपा लें यानी एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें और झूठ बोलें तो इनके सौदे की बरकत मिट जाती है। ये सही बुखारी की रवायत है, तो उनके सौदे की बरकत जो है वो मिट जाती है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अगर रहमत चाहिए, अगर बरकत चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। फिर मुफस्सरीन और उलमा ये भी कहते हैं कि अगर आप मजदूर से मजदूरी करवाते हैं तो जितनी मजदूरी करवाई है उतने अगर आप पैसे नहीं देते तो ये भी कमी में आता है, ये भी कमी में आता है कि आपने जितनी काम करवाया है आपने उतनी जो है वो मजदूरी उसको नहीं दी, फिर धोखा दिया। इसी तरह जो है वो जैसे कोई जॉब करने वाला मुलाजिम है और ऑफिस के जो औकात हैं अगर वो औकात पूरे नहीं लगाता, टाइम 7 बजे से वो कहता है 9 बजे ही मैं तो खोलता हूँ काम और शुरू करता हूँ अपना काम, ऑफिस में कोई पूछता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, लेकिन 7 से 9 यानी 2 घंटे की जो तनख्वाह है ये हराम है फिर, इसलिए कि ये भी कमी में आता है मुखसरीन में, मुफसदीन में। और ये जो बिलकिस्तासिल मुस्तकीम जो है, जो तराजू है अदल का, इसमें जो है वो कमी करने में आता है। तो ये वो अमल है कि ये अल्लाह को जो है वो सख्त नापसंद है, और क्या करना चाहिए कि इससे हम सबको जो है वो बचना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। और इस सिलसिले में आप देखिए कि चीजों को कमी करना, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ने एक शख्स को देखा कि नमाज असर में शरीक नहीं हुआ, वजह पूछी तो उसने कुछ उजर किया, आपने फरमाया तफफ तूने तोलने में कमी कर दी, है ना, वैलुल मुतफ़फ़ीन, इसमें पारे में आपने हिफ्ज़ भी कर लिया माशाल्लाह। तो हक के मुताबिक करना या कम करना तो ये तदफीफ है, कमी है, तो ये तदफीफ जो है ये हराम है, कमी करना जो है वो हराम है। फिर क्या फरमाते हैं कि वत्तकुल्ला जी, और डरो जात से, वत्तकुल्ला जी और तकवा इख्तियार करो उस जात का, खलाककुम जिसने तुमको पैदा किया, वल जिबिल्लतल अव्वलीन और जो है गुज़िश्ता नस्लों को भी पैदा किया। तो अब आप देखें कि जिबिल्लत जो है ये बतौर मुबालगा है और जीम बालाम पहाड़ के लिए आता है, और जैसे वो अपने जुस्से के एतबार से, जसामत के एतबार से बड़ा होता है, तो इसी तरह जो है मखलूक के लिए भी जिबिल लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है, एक इसके मानी तो ये हैं, और दूसरे इसके मानी जो हैं एक बड़ी जमात के भी किए जाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो पैदा किया, जो जो भी मखलूक थी उसको भी पैदा किया और जो भी जमात थी बड़ी अल्लाह ताला ने उसको भी पैदा किया। तो यहां पर बताने का मकसद क्या है कि वो अल्लाह ही की जात है जो कि तखलीक करती है, खालिक है। यहां पे दरअसल बताया जा रहा है कि खालिक कौन है, अल्लाह, और तुम हो अल्लाह की मखलूक, है ना, खलककुम तुम्हें पैदा किया, वल जिबिल्लता और जो मखलूक थी, अल अव्वलीन, अव्वल की जमा है अव्वलीन, तो जो पहली मखलूक थी जो गुज़िश्ता नस्लें थी उन सबको भी अल्लाह ने पैदा किया। अब कोई वजह नहीं है कि तुम जो है वो बुरे काम करो तो अल्लाह तुम्हें सजा ना दे, पिछलों ने बुरे काम किए तो अल्लाह ने उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया। तो खालिक जब अल्लाह है तो मालिक अल्लाह है तो हाकिम अल्लाह है, तो अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का कानून जो है वो अदल पर जो है वो इन्हिसार करता है। और ऐसा नहीं है कि पिछली कौमों ने जब अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन पर जब अजाब नाजिल किया तो उनके लिए तराजू में तोलने का पैमाना अल्लाह के पास और था और तुम्हारे लिए तोलने का पैमाना और है कि तुम अपनी रविश ना बदलो और अल्लाह तुम्हें पूछे ही ना, तुम्हें सजा ही ना दे। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वलजिबिल्लतल अव्वलीन, उस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, उस अल्लाह से डरो, उसका खौफ करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहली नस्लों को भी। और पहली नस्लों में पहली कौमों ने जिस जिसने अल्लाह की नाफरमानी की अल्लाह ताला ने उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया, है ना। तो अल्लाह ताला जो है वो नाफरमान जो गुमराह होते हैं उनको खत्म कर देता है। अब आप देखें कि बजाय इसके कि वो डरते तो उन्होंने क्या कहा, कालू इन्नमा अंता मिनल मुसाहरीन, उन्होंने कहा इन्नमा इसके सिवा कुछ भी नहीं, अंता तू है, मिनल मुसाहरीन सहर जदा आदमियों में से, मुसाहर की जमा है मुसाहरीन। और ये जो है ये जो सीगा है मुसाहरीन का ये भी मुबालगे का सीगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे बता रहे हैं कि कौम जो थी वो इस कदर हद से गुजरी भी थी, इस कदर जो थी वो इनकार करने वाली थी कि बजाय इसके कि वो ईमान लाती उल्टा जो है ये कहने लगी कि तू तो जो है वो मुसहरीन में से है। और इसके बारे में मुफस्सरीन क्या बताते हैं कि उनके यहां ये समझा जाता था कि जैसे जो है वो अगर किसी पर जो है कोई जिन आकर उसको छू गया है या कोई शख्स दीवानों वाली बातें करता है तो या किसी पर जादू कर दिया गया है तो उसके लिए ये मुसहर का या साहिर का लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे भी जो है जैसे एक होता है ना साहिर, तो ये उससे भी बढ़कर है मुसहरीन। तो तू तो महज एक जादू जदा आदमी है, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है। तो ईमान लाने की बजाय इकरार करने की बजाय जो है क्या कहते हैं, ये नहीं मानते कि तू रसूल है, जैसे कि उन्होंने कहा कि रसूल उन अमीन, तो कहते हैं कि नहीं बल्कि क्या है कि तू जादू जदा लोगों में से है। वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना, और आप नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसे। अब इतना ही नहीं कि कहते हैं कि बस, यानी इस बात पे बहुत बिगड़ते थे कि हम ही जैसा इंसान क्यों है, और साथ ही क्या कहते हैं वह इन नज़ुन्नू का लमिन अल काज़िबीन, और हम तो समझते हैं तुमको अलबत्ता झूठों में से। वह इन जो है यहां पर किस मानी में है, बेशक के मानी में है कि बेशक, क्योंकि आगे जो है ना लमिन जो में लाम आया है लामे ताकीद, उसकी वजह से इन बेशक के मानी दे रहा है। वह इन नज़ुन्नू का, और बेशक हम गुमान करते हैं यकीन रखते हैं तेरे बारे में, लमिन अल काज़िबीन कि तू जो है वो झूठों में से है। तो काज़िब की जमा है काज़िबीन, तो जादूगर भी कह दिया झूठा भी कह दिया और साथ ही जो थे मुतालबा किया उन्होंने। और ये थी उनकी हठधर्मी की इंतहा, ये थी उनकी हठधर्मी की जो और सरकशी की जो है इंतहा। और वो क्या थी कि मुकज़्ज़बीन ने खुद थे मुकज़्ज़बीन, खुद थे वो झूठे, उन्होंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो किसका मुतालबा किया, अजाब का मुतालबा किया। तो एक तो थे अहले मक्का जिन्होंने अजाब का मुतालबा किया, जैसे सूरत बनी इसराइल आयत 92 में आता है, औ तुसाकितस्समा कमा ज़अमत अलैना किसफा, या फिर गिरा दे हम पर आसमान का कोई टुकड़ा जैसा कि तेरा दावा है। अब असाबुल एका जो थे इन्होंने भी अजाब का मुतालबा किया, इन्होंने क्या कहा, फअस्कित अलैना, बस गिरा दे हम पर, सीन काफ तोए के मानी होते गिरा दे, और यहां पे ऑर्डर का सीगा है, बस गिरा दे कोई नहीं सुनने वाले, कोई नहीं मानने वाले तेरी बातें। हम जो तिजारत में हेरा फेरी करते हैं, जो शिर्क करते हैं, और हमने जो तेरा इनकार किया है, तू कहता है कि अजाब आ जाएगा अल्लाह का, जैसे पिछली कौमों पर आया था जिन्होंने इनकार किया। तो बस क्या कर, फअस्कित फअस्कित, बस गिरा दे, ले आ। सकता होता है ना गिरना, और जो है वो अस्कता होता है गिरा दे, यानी गिराना, जैसे नजला नाजिल होना, उतरना और अंजला उतारना, तो सकता गिरना और अस्कता गिराना। तो फअस्कित, बस गिरा दे अलैना हम पर, किसाफम मिन समाई। तो किसाफत उनकी जमा है किसाफन, बादल रुई के टुकड़े को कहते हैं जो आसानी से अलग भी हो जाए और जुड़ भी जाए। तो अब जो है यानी आसमान का टुकड़ा, क्योंकि आसमान अगर देखें ऊपर से तो क्या लगता है, बादल ही बादल लगते हैं, रुई के गाले लगते हैं। तो आसमान से हम पर जो है कोई टुकड़ा गिरा दे, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर है तू सच्चों में से। तो ये था उनका अजाब का मुतालबा, और जवाब में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, قال ربي اعلم بما تعملون, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। तो ये जो है ना रब्बी आलम बिमा तामलून, ये जो है ना उनका अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने की कैफियत बताई जा रही है कि तफवीज इल्लाह, कि आसमान से टुकड़े गिराना तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है बल्कि अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह को खूब पता है तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी मक्कारियां, तुम्हारा कुफ्र, तुम्हारा फसाद, तुम्हारा फसाद फिल अर्द। तो जब मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह है हकीम, जब वो मुनासिब समझेगा तो वो अजाब सजा तुम पर ले आएगा। रब्बी आलमु बिमा तामलून, तुम मुतालबा कर रहे हो, तुम कैसे अमल कर रहे हो, मेरा अल्लाह खूब जानता है। फकज़्ज़बूहू, उन्होंने उसे झुटलाया, कौम वाले जो थे असाबुल एका जो थे, उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। हु की जमीर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ है। फाखज़हुम, फिर पकड़ लिया उनको अजाब व यौमि ज़ुल्ला, अजाब ने, और अजाब कैसा था, छतरी वाले दिन का अजाब था, छतरी वाले दिन का अजाब था। और जो है वो यौमि ज़ुल्ला जो है कहते हैं साइबान वाले दिन के अजाब ने उनको आकर जो है वो पकड़ लिया। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। वो अजाब आम अजाब नहीं था, वो बड़ा ही खौफनाक दिन का अजाब था। तो ये जो अजाब था जो यौमुज़ुल्ला का था, ये कैसा अजाब था कि जिसने आकर उनको जो है वो पकड़ लिया। तो इस सिलसिले में जो रवायात से हमें बात पता चलती है, और वो क्या है कि इस कौम के इनकार के नतीजे में जो है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है क्या कहा, उन्होंने कहा फतवल्ला अन्हुम वकाला या कौमी लकद अबलगतुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम फकैफ आसा अला कौमिन काफिरीन। सूरत आराफ आयत नंबर 93 में वो अपनी जो है वो इजहार अफसोस करते हैं, उनकी तबाही पर अफसोस करते हैं, और उस अपनी जो कौम है उससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आप सूरत आराफ ही को अगर आप पढ़ें तो वहां पे अजाब का हमें जिक्र मिलता है, और हमें जो अजाब का जिक्र मिलता है तो उससे क्या बात पता चलती है कि इस कौम पर जो अजाब आया था वो कोई एक तरह का अजाब नहीं था, बल्कि इन पर जो अजाब आया तो ये अजाब जो था ये तीन तरह का अजाब था जो इन पर आया था। ये तीन तरह का अजाब जो था वो इन पर आया था, और चूंकि इन्होंने जो है वो आसमान से जो है वो मांगा था अल्लाह से अजाब, तो कहते हैं कि 7 दिन तक सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या किया कि गर्मी और धूप इन पर मुसल्लत कर दी। इसके बाद बादलों का एक साया आया, और ये सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साये तले जमा हो गए और कुछ सुख का सांस लिया, लेकिन चंद लम्हे बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। ऊपर से आग बरसनी शुरू हुई और जमीन से जलजले आने लगे कि जमीन जलजलों से लरज उठी और एक सख्त चिंगार ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस तरह इन पर 3 दिन यानी 3 किस्म का इन पर अजाब आया। और वैसे ये जो थे बड़े नडर थे, बड़े ही नाफरमान थे, और खुद आप सोचें कि जो कौम अजाब का मुतालबा करेगी फिर अल्लाह ताला उसके साथ जो है वो कैसा जो है वो मामला करेंगे। तो इब्ने कसीर में जो है वो इब्ने कसीर जो इमाम है वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 3 मकामात पर कौम शोएब की हिलाकत का जिक्र किया है और तीनों जगह पर मौके की मुनासबत से अलग अलग अजाब का जिक्र किया है। आप नोट कर लीजिए, जैसे सूरत आराफ आयत नंबर 88 में जलजले का जिक्र है कि इस कौम पर जो था वो जलजला आया था। ये वो कौम थी कि अल्लाह ताला ने इनको रजफा से जो है वो रजफा के अंदर इन लोगों को पकड़ लिया। फअखजत हुमुर रजफतु फअसबहु फी दारहिम जासिमीन, ये इनके ऊपर जो है वो अजाब आया। और सूरत हूद आयत नंबर 94 में सेहा के अजाब का जिक्र आता है। जासिमीन, और यहां सूरह शोरा में आसमान से टुकड़े गिराने का, और यहां से कौन सा अजाब है, योमुजुल्ला का, साहिबान का, छतरी का अजाब। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले इस कौम पर सख्त गर्मी मुसल्लत की, ना मकान के अंदर चैन आता था ना बाहर, जिस भी जगह खड़े थे बड़े बेचैन, कभी अंदर निकलते थे, कभी बाहर आते थे, कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर क्या हुआ कि इनको अपने करीबी जंगल में बादल नजर आए, बादल बड़े गहरे थे। इन्होंने कहा कि वहां जाकर शायद हमें कुछ सुकून मिले, तो वहां पे गए, ठंडी हवा भी चल रही थी, सारी कौम चूंकि गर्मी से परेशान थी तो सब दौड़ दौड़ कर उस बादल के नीचे जाकर जमा हो गए। जब सारी कौम बादल के नीचे आ गई तो और वो समझने लगे कि होने लगी हम पे बारिश, बड़े वो खुश हुए, तो इस बादल ने इन पर पानी के बजाय आग की बारिश कर दी, आग बरसानी शुरू कर दी, जिससे ये सब भस्म होकर रह गए। और साथ ही जो है यानी रजफा अगर आप लें तो उससे क्या बात पता चलती है कि एक जलजला भी इन पर आ गया। तो गोया के अल्लाह ताला ने 3 किस्म का अजाब जो था वो इस कौम को दिया, क्योंकि ये थी अल्लाह की नाफरमान कौम। तो कौमों का इनकार करना अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के अहकामात का, और जो है वो अपने अमलों को खराब करना, और उसके बाद जो है वो अजाब का मुतालबा करना, ये ऐसी सख्त बात है कि फिर अल्लाह जब उनको तबाह करता है तो फिर ऐसी तबाही जो है ऐसी तबाही उसको देता है कि आप सोचें कि अजाब के 3 नाम, गोया कि एक अजाब में 3 3 चीजें जो थी वो शामिल थी। तो ये है कि जब भी गुनाहों का डोल भर जाता है, जब भी कोई कौम जो है वो अपने वक्त में अपनी मोहलत अमल में गुनाह करती है, अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज करती है, तो अल्लाह ताला उसको जो है वो अजाब भेजकर तबाहो बर्बाद कर देता है। तो असाबे मदियन, असाबुल ऐका जो अलग अलग कबीले थे, पास पास रहते थे, एक ही कौम थी जो भी थे, लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब इनकी तरफ भेजे गए तो अल्लाह ताला ने इनको जो है वो तबाहो बर्बाद कर दिया। और साथ ही फरमाते हैं इन नफीजा लिका लाया, यकीनन इसमें एक निशानी है, वमा कैना अक्सरहुम मुमिनीन, मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं हैं, ईमान लाने वाले नहीं हैं। वा इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। तो यहां पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, यहां पर आकर कौमों के वाकयात जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना। और आप देखिए कि यहां पर जब आपने कौमों के वाकयात पढ़े हैं तो तमाम कौमों के वाकयात में जो हमें चीजें नजर आती हैं तो क्या आती हैं कि तमाम अंबिया की दावत का अंदाज एक था। तमाम अंबिया की जो दावत थी उसकी बुनियादें एक थी, तौहीद, रिसालत और आखिरत। फिर उसके बाद जो है वो कौमें जो थी उनका मामला क्या था कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने वाली थी, अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाली थी और अल्लाह के अहकामात जो थे उनका भी इनकार करने वाली थी। अब आप देखें कि जब अल्लाह ताला जो है वो इनकार करने वालों को पकड़ता है तो कैसे पकड़ता है। मैं सोच रही थी कि फिरौन और उसके साथी कैसी जबरदस्त जो थे वो जिंदगी बसर कर रहे थे। मिस्र में जो थी वो ऐसे थी हालत कि जैसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, दूर तक उनके पास सोने, जमुर्द और हीरे जवाहरात की कानें थी, जैसे कि दूध की नहरें बहती हैं। बड़ा कुछ अल्लाह ने उनको नवाजा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सबको इकट्ठा समंदर के अंदर कर दिया। उनको पहले इकट्ठा किया समंदर के अंदर, ये था अल्लाह का मकर, अल्लाह का, अल्लाह ताला की तदबीर, और फिर समंदर के अंदर ही वो डूब गए। खुद ही अपनी, अपने चश्मों को, अपनी खेतियों को, अपने महल को, अपने तख्त को, अपनी घरों को, अपने जेवर को, मवेशियों को, सब कुछ छोड़कर खुद ही समंदर के अंदर आ गए। और ये जो कौम थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, खुद ही घरों में से निकलकर जो है वो बादलों के नीचे आ गई पानी की, ठंडक की तलाश में, और अल्लाह ताला ने फिर इस कौम को भी तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह कैसा पकड़ता है, अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है। इन बतशा रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ लोगों बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में अगर हम देखें तो क्या हमें जिंदगी में उसूल मिलता है, अदल और इंसाफ करना, बात करनी है, गवाही देनी है, साथ देना है तो हक का साथ देना चाहिए। देखें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने फ्रीडम अवार्ड जो है, तीन फ्रीडम अवार्ड दिए हैं। एक तो 50 की जो है वो दिहाई में, तो 50 की दिहाई में उसने क्या किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने जस्टिस मार्शल को फ्रीडम अवार्ड दिया। क्यों? कि उसने जो थी वो ब्लैक और व्हाइट के जो बच्चे थे ना उनकी इकट्ठी तालीम जो है ना उसको, उसका रवाज दिया, उसको, उसके लिए वो लड़ा। जो जस्टिस मार्शल था उस वक्त का, उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि व्हाइट के बच्चे अलग पढ़े और ब्लैक के अलग, उससे पहले अलग अलग पढ़े जाते थे, वो अलग अलग उनकी तालीम थी। तो पब्लिक स्कूल की सतह पर और सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, उसने अमेरिका में क्या किया कि ब्लैक और जो व्हाइट जो बच्चे थे ना उनकी मखलूत तालीम जो थी उसको राइज किया, उसके लिए उसने जो है वो फैसला दिया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको फ्रीडम अवार्ड दिया। फिर नेल्सन मंडेला, इसने अपने मुल्क की आजादी के लिए जेल के अंदर से तारीखी जिद्दोजहद की और कामयाब हो गया। दूसरा अवार्ड इन्होंने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। तो फिर दूसरा अवार्ड इन्होंने नेल्सन मंडेला को दिया। और आपको पता है तीसरा अवार्ड किसको दिया? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को, पाकिस्तान से। उसके 153 फैसलों का जायजा लेकर उसको अवार्ड दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सामने आया और गवर्नमेंट ने जहां जहां जो जो ज्यादतियां की थी और जहां जहां भी उसको लगा कि ये चीज जो है ये गलत है, तो वो अदल और इंसाफ की तलवार बनकर उठा कि काफिरों ने भी उसको तस्लीम किया और उसको जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने जो है वो फ्रीडम अवार्ड दिया। मैं अखबार पढ़ रही थी तो उसमें ये चीज पढ़ रही थी कि ये तीन अवार्ड उसने दिए हैं। और एक आप सोचें कि यानी ये मशरिक की तरफ जो लोग रहते हैं, एशिया की तरफ, तो पहला अवार्ड वहां पे से किसी को जो ये मिला है, ये कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही इस्लामी मुल्क में क्या है कि उसको माजूल कर दिया गया, जो उसके साथ जज थे उनको भी, वकीलों को भी, और अदल के लिए जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, जलसे जुलूस जो है वो निकाल रहे हैं ना।
भीख मांग रहे हैं।
हाँ, तो अदल की भीख मांग रहे हैं। तो क्या अमल के लिए बात पता चलती है कि आप जिस जगह खड़े हैं आप वहां पे अदल करें, आप अपने घर के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अगर आप वालदैन हैं तो बच्चों के अंदर, अगर आप उस्ताद हैं तो तालबिलों के अंदर, है ना। तो ये चीज है जिसको जो है वो हमें कायम करना चाहिए। और अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि ये जो नाइंसाफी करना ना, इससे कायनात के निजाम में जो है वो बिगाड़ पैदा होता है। तो अदल बहुत जरूरी है। और अर्श के साए तले जिन लोगों को जगह मिलेगी उनमें से एक कौन है सबसे पहले जिसका जिक्र मिलता है? अदल करने वाला हुक्मरान, आदिल हुक्मरान, अदल करने वाला, उसको जो है वो अर्श के साए में जगह मिलेगी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो है ये अदल करने वाले थे। बहुत थोड़ी हुकूमत की है इन्होंने, लेकिन क्या था कि इनका शुमार जो है वो खुल्फाए राशिदीन के जमाने में किया जाता है। चार वो खलीफा, पांचवा इनका नाम भी आता है, और इनको उम्रे सानी के नाम से याद किया जाता है। और पता है जब जो है जिस घर में अदल किया जाता है वहां बरकत होती है। मैंने आपको बताया ना कि अभी दो दो खरीदने वाले हैं, एक बेचने वाला है, खरीदने वाला, अगर वो सच बोलते हैं तो बरकत उनको मिलती है, रहमत। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो बरकत उठा ली जाती है। तो जिस मुल्क में अदल किया जाता है ना, बादशाह हैं, अदालतें हैं, लोग हैं, आमिल हैं, गवर्नर हैं, वो अदल करते हैं, तो उस मुल्क की जमीन जरखेज होती है, वहां पे फलों में रस होता है, वहां पे यानी फल, ये कायनात में देखें जो फल भी है ना वो रसीले होते हैं, उनका टेस्ट अच्छा होता है, और उनके जो जानवर है ना वो ज्यादा दूध देते हैं, अच्छा दूध देते हैं। और जिन जो है वो मुल्कों में हाकिम हैं और जो गवर्नर हैं और जो भी जिम्मेदार हैं वो अदल नहीं करते ना, तो अल्लाह ताला वहां से अपनी बरकत रहमत उठा लेते हैं। वहां पे झगड़े लड़ाइयां, और क्या है कि जानवर जो है वो उनका दूध कम हो जाता है, फलों में रस कम हो जाता है। एक दफा एक बादशाह के बारे में आता है कि जा रहा था और उसने जो है वो क्या किया कि बाग जो है उसमें फल देखा, और फल जो है उसने वो उसको तोड़ा और फिर उसके बाद उसको खाया, बड़ा रसीला था, रस से भरा हुआ। तो जो है वो उसकी ना नियत में फतूर हो गया, उसने सोचा कि नहीं इस पर ना मुझे कुछ टैक्स लगा देना चाहिए, या उसने जैसे जो है वो अदल से हटकर तरीका सोचा। और बास कहते हैं कि टैक्स लगाने का सोचा कि नहीं मैं इससे इतने पैसे ज्यादा लिया करूंगा, इतना रस वाला। और फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके फिर जब फल तोड़ा तो उसके अंदर रस कम था, उसमें रस नहीं था जितने पहले में था। उसने कहा कि असल में मेरी नीयत में फतूर आ गया, फौरन उसने अपना इरादा जो था वो तर्क कर दिया। इस तरह से लोग जो थे वो अमल करते थे ना। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनकी जो है वो वफात हो गई तो एक बकरियां चराने वाला जो था ना वो जंगल से शहर की तरफ दौड़ने लगा। उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि अदल करने वाला बादशाह दुनिया से उठ गया है, क्योंकि वहां पे उस जमाने मीडिया तो था नहीं, मौजूदा दौर मीडिया का दौर है ना। कैसे उसको पता चला? कहते हैं कि कहता है कि मेरे जो रेवड़ था उसमें बकरियां भी थी, तो भेड़िए ने मेरी बकरी को जो है वो उठा लिया। तो मैंने कहा ये जो जुल्म हुआ है ना इसका ये मतलब है कि अदल करने वाला बादशाह जो है वो उठ गया। तो जहर से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो मार दिया गया था, है ना। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक नहीं बेशुमार वाकयात मिलते हैं कि वो अदल करने वाले थे। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन सबको खड़ा करेंगे और फिर सबसे पूछेंगे कि जो कुछ ही मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने उसमें अदल किया था? जो सलाहियत दी, जो कुव्वत दी, जो माल दिया, जो औलाद दी, उन सब से जो है वो उसके बारे में इंसान से पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रैयती, हर एक राई है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी जो हैं वो अदल करने वाले बने, है ना। और मैं आपके सामने एक अदल के बारे में एक छोटा सा वाकया रखती हूँ, खलीफा हशाम बिन अब्दुल मालिक का। खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक जो था ये हज के लिए जब मक्का आया तो क्या कहा लोगों से, इसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर कोई रसूल अल्लाह के सहाबी हों, अगर वो जिंदा हैं तो उनको बुलाएं ताकि मैं उनसे मिल सकूं, मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो लोगों ने बताया कि नहीं, सब सहाबा फौत हो चुके हैं। कहने लगा अच्छा, कोई ताबेई से ही, ताबेई कौन होता है? जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई। चुनाचे हजरत ताऊस बिन किसान यमानी रहमतुल्लाह अलैह ये मक्का में मौजूद थे, लोग गए और इनको खलीफा के पास ले आए। जब वो इसके कमरे में दाखिल हुए तो अपने जूते कालीन के किनारे से लगाकर उतारे और इसको अमीरुल मोमिनीन कहने की बजाय क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम, कुछ नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन, और फिर करीब आकर बैठ गए। हशाम के चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई दिए। उस वक्त का दस्तूर था कि खलीफा को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा जाए, क्योंकि ये कुनियत थी ना। लेकिन हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने कुनियत की बजाय से कहा कैफा अंता या हिशाम, क्या हिशाम तू कैसा है? अब तो हिशाम को और ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से से बाहर होकर बोला या ताऊसु मा हमला का अला मा सनात, ए ताऊस आपको ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई? सनात यानी ये जो तुमने जैसे कोई काम करना, सनतकारी। हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वमा सनातु, मैंने क्या किया है? अब खलीफा शाम के गुस्से में और इजाफा हो गया कि पता भी नहीं चला कि गलती पे गलती और पता ही नहीं। पहली गलती ये कि आपने कालीन के किनारे से लगाकर अपने जूते उतारे, क्योंकि कालीन के साथ लगाकर उसके किनारे पर जूते उतारे ना, ये अदब के खिलाफ है। दूसरी गलती ये की कि आपने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम क्यों नहीं किया, मेरी कुनियत से पुकारने की बजाय मेरे नाम से क्यों पुकारा? और मजीद कह रहे हो कि ए हशाम कैसे हो, भला हुक्मरानों को ऐसे पुकारा जाता है? और फिर और गलती ये कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे पास आकर बैठ गए, है ना, वो तो सलाम भी और झुकना भी, फिर इजाजत हो तो बैठे हैं, ये सारी चीज। हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन जवाब दिया हाँ, मैंने तुम्हारे पास दाखिल होने से पहले अपने जूते उतारे, मगर सुनो मैं तो हर रोज 5 मरतबा अपने रब्बे ताला के घर के दरवाजे पर जूते उतारता हूँ और वो कभी मुझसे नाराज नहीं हुआ। तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम नहीं किया, तो क्या ये बात है कि तमाम लोग तुम्हारी खिलाफत से राजी हैं? तमाम लोग तुम्हारी खिलाफत से राजी नहीं हैं और ना ही तमाम मुसलमान तुम्हें अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, लिहाजा अगर मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहता तो इसमें झूठ का एहतमाल था, इसलिए मैंने अमीरुल मोमिनीन कहकर तुम्हें सलाम नहीं किया। क्योंकि जबरदस्ती की हुकूमत, और वो जब बनु उमैया का दौर आया तो, और बनु अब्बास का तो क्या था कि खिलाफत लोगों के मशवरे से थोड़ी थी, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगी, खिलाफत मलूकियत में तब्दील हो चुकी थी। तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हें कुनियत के साथ क्यों नहीं पुकारा और नाम लेकर क्यों पुकारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दोस्तों को, नबियों को जब मुखातिब किया तो क्या कहा, या दाऊद, या यहया, या मूसा, कि अपने दोस्तों को जब पुकारा तो नाम लेके पुकारा और अपने बदतरीन दुश्मन को जब पुकारा तो उसकी कुनियत से पुकारा। तब्बत यदा अभी लहबूं अतब, तुम्हारा ये कहना कि मैं बगैर इजाजत के तुम्हारे पास आकर बैठ गया, तो सुनो मैंने हजरत अली रजी अल्लाह को जो अमीर मोमिनीन थे ये कहते हुए सुना, अगर तू किसी जहन्नमी को देखना चाहे तो इस आदमी को देख ले जो बैठा और इसके इर्द गिर्द लोग अदब के साथ खड़े हों, इसलिए मैं खड़ा रहने के बजाय बैठ गया। खुशामदी और मुख्तलिफ किस्म के लोग ऐसे पास होते हैं, और बाज लोग जो हैं वो बहुत चाहते हैं कि जब वो आए तो लोग खड़े हो जाएं और पहले सलाम करें, और जब वो खाना लें तो दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो अपने आप के लिए, अपनी जात के लिए वो दूसरों से हटो बचो, और बड़ा एक स्टेटस चाहते हैं, खुद नहीं जाना चाहिए। लोगों का काम है अगर वो किसी की इज्जत करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो दिलों पे की जाती है, सरों पे नहीं, है ना। तो अब क्या है कि खलीफा हशाम अब्दुल मलिक जो था ये बिल्कुल लाजवाब हो गया और गुस्सा जब्त करने के बाद कहने लगा इज़नी, आप मुझे कुछ नसीहत करें। तो हजरत ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैंने अमीर मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह को फरमाते सुना है कि जहन्नुम में पहाड़ की चोटियों की तरह लंबे तड़ंगे सांप होंगे और खचरों की तरह बड़े बड़े बिच्छू होंगे, जो रियाया के साथ अदलो इंसाफ न करने वाले अमीर को डसेंगे। तो अगर अमीर रियाया के साथ अदलो इंसाफ ना करे तो उसको डसें, तो अगर घर में माँ बाप बच्चों में अदलो इंसाफ ना करें, विरासत की तकसीम है, लेन देन है, या उस्ताद अपने तालबिलों के दरमियान अदलो इंसाफ ना करे, है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि अदल किया जाए। और शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ये क्या करती थी, ये तिजारत में लेन देन में कमी करती थी, डंडी मारती थी, अदल नहीं करती थी। तो यहां पर फिर हमारे लिए अमल का असूल क्या आता है, इन नफीजा लिका लाया, यकीनन इसमें एक निशानी है, वमा कैना अक्सर हम मुमिनीन, मगर इनमें अक्सर मानने वाले नहीं है, ज्यादातर लोग कोई नहीं मानते, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। तो आइए ये सारी कौमों के वाकयात जो हैं इनमें से हम अमल के लिए उसूल निकालें, और हम सोचें कि अल्लाह ताला ने 8 दफा ये आयतें तरजीह जो है इनको बयान किया कि मेरी बातों में, पिछली कौमों के वाकयात में ऐ लोगो तुम्हारे लिए निशानियां हैं। तो क्या हो तुम जो है वो अल्लाह से डरने वाले, क्या हो तुम अल्लाह की अतात करने वाले, क्या हो तुम अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले, है ना। तो जब अल्लाह का किसी के दिल में खौफ पैदा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है कि वो अल्लाह ताला के आगे जो है वो अपने आप को झुकाता है, वो अल्लाह का हो जाता है। आप देखिए इन कौमों के वाकयात में हर नबी ने बार बार अपनी कौम से कहा कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, है ना। तो असल बात क्या है कि जो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, हम अल्लाह ताला से डरें, और हम जो है अपने अकायद दुरुस्त करें, नंबर 2। नंबर 3, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अतात करें। ये बहुत जरूरी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अतात की जाए, उनको अपना रोल मॉडल जो है वो माना जाए, क्योंकि यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात न करना, उनसे खाली प्यार तो करना लेकिन आपका जो उस्वा है उसको अपनी जिंदगी में नाफिस ना करना, तो ये चीज क्या है, ये अल्लाह ताला की जो है वो नाफरमानी है, ये चीज अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। फिर इसके बाद हमारे लिए चौथा अमल क्या पता चलता है कि जिस वजह से जिस कौम पर अजाब आया है हम वो काम करने वाले ना बने, जैसे लवातत का अमल है, जैसे तिजारत में लेन देन में कमी करना है, जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घर बनाना है, उनको सजाना, बस घरों घरों की ही फिक्र है, अपने खाने पीने ही की फिक्र है, असराफ करना, है ना। और इसके अलावा जो है फिरौन ने जो है वो क्या किया, उसने भी तकबर किया, कौम समूद ने तकबर किया, असराफ किया। और इसके अलावा हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो है उसने भी मजाक उड़ाया, उसने भी जो है वो कौम जो थी वो भी हद से गुजर गई। तो इन सारी बातों से जो मेरे और आपके लिए जो है बात पता चलती है वो क्या है कि वो अमल मैं और आप ना करें जो कि उन कौमों ने किए। फिर करें क्या, इन्हीं सारी बातों को अगर मैं और आप समेट लें तो अमल के लिए उसूल ये निकलता है कि मेरी और आपकी जिंदगी जो है उसमें तकवा होना चाहिए, कि बात करें तो वो भी नपी तुली, कदम उठाएं तो वो भी नपा तुला, सोच कर, क्यों सोच कर अपना कदम उठाएं, कहीं अल्लाह ताला की जो है वो नाफरमानी ना हो जाए, कहीं हम अल्लाह ताला को जो है वो नाराज ना कर दें। अब आप देखें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के एक बेटे ने एक अंगूठी बनवाई और उसने जड़ने के लिए 1000 दिरहम नगीना, यानी जो नगीना खरीदा, जो उसके अंदर स्टोन लगाना था वो 1000 दिरहम का लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला तो आपने अपने बेटे को लिखा जो भी लिखा उसके अंदर, जो मैं टॉपिक पर आ रही हूँ उसमें लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने 1,000 दिरहम में नगीना खरीदा है, तुम इस नगीने को फरोख्त कर दो और इसकी कीमत से 1,000 भूखे लोगों को खाना खिला दो और चीनी लोहे की कोई अंगूठी बनवा लो। यानी वो जो तुम 1,000 दिरहम के स्टोन को लगाकर अंगूठी पहनने वाले हो, उसकी बजाय कोई लोहे की, कोई आयरन की अंगूठी बनवाओ और उस पर ये लिखवाओ, रहमुल्लाहु इमरान अरफा कद्रा नफसे, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जिसने अपनी हकीकत पहचान ली। तो आप देखें कि ये है तकवा। वालदैन तकवा इख्तियार करेंगे तो बच्चों को नसीहत करेंगे और खुद उनकी जिंदगी में तकवा होगा, और इसी तरह बच्चे तकवा इख्तियार करेंगे, उस्ताद तकवा इख्तियार करेगा तो तालिबे इल्मों में असर होगा, खुद उसकी अपनी जिंदगी में असर होगा, है ना। एक है तकवा और एक है फतवा। तो बार बार जो बात सामने आती है कि मैं और आप जो हैं वो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, दुनिया से कुछ ना चाहें, तारीफ शाबाश और दुनिया पैसे, बल्कि अल्लाह से, वमा अजरिया इल्ला अल्लाह। और इसके बाद क्या बात पता चलती है कि हर हाल में दावा का काम करते रहना है, पैगंबराना किरदार मैंने और आपने जो है वो अदा करना है। सीधे रास्ते से भटक जाते हैं जो लोग, उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ तो कोई बात भी है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे, मुझसे और आपसे राजी हो जाए, तमाम मुसलमानों से राजी हो जाए। और ये दिन जो कि जुलहज का महीना शुरू हो चुका है, हाजी हज की तैयारियों में है, और इन दिनों में मैं और आप भी अमले सवाले जो है ना उसको पालें, ऐसा अमल जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, ऐसा अमल जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो, और फिर अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नफ्से मुतमईना में शामिल कर ले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।